शांति, हमारे बीच आदरणीय उषा दीदी हम सभी को ज्ञान रत्नों से भरपूर करने के लिए उपस्थित हैं। हम सभी करतल ध्वनि से दीदी जी का स्वागत करते हैं। आप इंदौर जोन की वरिष्ठ दीदियों में से हैं और विगत 40 वर्षों से आप यज्ञ में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं और प्रशासक विंग की आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। वर्तमान समय महाकाल की नगरी उज्जैन में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो हम सबको ज्ञान रत्नों से भरपूर करेंगी आदरणीय उषा दीदी जी।
ओम शांति। सब प्यार से बोलें ओम शांति। प्यारे बाबा से हम बच्चों को कितना अच्छा मंत्र मिला है, ओम शांति। सब दुख दर्द की दवाई ओम शांति। अशांति को खत्म करने वाली, लड़ाई झगड़े कलह क्लेश को समाप्त करने का मंत्र ओम शांति। कहीं कुछ भी हो अपन मुख से भी बोल दो ओम शांति, अंदर मन में भी बोल दो अपने आप से ओम शांति, तो शांति हो जाती। मीठे प्यारे बाबा की कितनी ना कमाल कहेंगे कि प्यारे बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाया, अपना बना करके हम बच्चों का जीवन बनाने के लिए सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता से भरपूर करने के लिए बाबा ने कितने नहीं हमको मंत्र दिए हैं। अगर विचार करें इस आज की कलह क्लेश की दुनिया में, अनेक प्रकार के वातावरण में रहते हुए अनेक प्रकार के अनेक लोग, उनके क्या क्या नहीं वाइब्रेशन, उनके बीच में रहते हुए मीठे बाबा की कमाल कहेंगे कि बाबा की बातों का सिमरण कर लेते हैं कि बाबा हम बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं, क्या मंत्र देते हैं। तो दुख के जगत में रहते भी अनेक प्रकार की वृत्तियों वाले लोगों के बीच कारोबार करते भी हम न्यारा और प्यारा हो करके रह लेते हैं, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को न्यारा और प्यारा रहने का मंत्र दिया है कि बच्चे रहना तो तुम्हें इस पुरानी दुनिया में ही है, परंतु इसके बीच में रहते तुम्हारे ऊपर इसका असर ना पड़े, प्रभाव ना हो, कैसे तुम न्यारे प्यारे रह करके इस भव सागर को पार करो। वह बाबा ने हम बच्चों को सिखलाया है और उन बाबा की शिक्षाओं को हम स्मृति में रखते हैं तो सहज सहज हम खुशी खुशी हंसते हुए सब बातों को पार कर जाते हैं। अभी गीत के बोल भी सुन रहे थे कि प्यारे बाबा ने हम बच्चों को, प्यारे बाबा ने मंत्र दिया। सोचो भला करो भला, सुन रहे थे ना सभी। आज देखो दुनिया में अनेक बड़े बड़े महात्माएं महापुरुष हैं, बहुत अच्छा उपदेश प्रवचन देते हैं, पर यह पक्का कराएं कि सोचो भला करो भला, व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, कोई भी नहीं देता। और हम बच्चों को बाबा ने व्यर्थ से मुक्त होने की कितनी अच्छी शिक्षा दी है, सावधानी दी है कि बच्चे तुम्हारे संपर्क संबंध में तो व्यर्थ बोलने वाले ही आएंगे, व्यर्थ सोचने वाले ही आएंगे, व्यर्थ देखने वाले ही आएंगे, व्यर्थ करने वाले ही आएंगे, परंतु तुम्हें उस व्यर्थ को नहीं देखना है, तुम्हें व्यर्थ को नहीं सुनना है, तुम्हें व्यर्थ नहीं सोचना है। सब कुछ देखते सुनते भी तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी का विचार नहीं चलना चाहिए, तुम्हें तो अपना सोचना भी शक्तिशाली समर्थ है, व्यर्थ नहीं सोचना है। सोचो भला करो भला, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना करने का पाठ बाबा ने हम बच्चों को पक्का कराया है। उसके लिए ही अगर हम बाबा की रोज की मुरलियों से अगर हम ध्यान से सुनते हैं तो रोज की मुरली में ही हमारे को शिक्षा सावधानी बाबा की प्रेम भरी शिक्षाएं सुनने को मिल जाती हैं, जिसके ऊपर हम अटेंशन देते हैं, सारा दिन उसको स्मृति में रखते हैं, तो हमारा सोचना बोलना करना सब अच्छा हो जाता है। अभी बीच में एक मुरली चली जिसमें बाबा का वरदान था कि आप स्मृति में रखो कि संगम युग समर्थ युग है, मैं समर्थ बाप का बच्चा, मैं समर्थ आत्मा हूं। अगर यह ही स्मृति में रखेंगे सारा दिन, समय कौन सा समर्थ युग है, संगम युग समर्थ युग है ना, कल्याणकारी युग है, हर बात में कल्याण ही कल्याण है, समर्थ युग है, समर्थ बनाने वाला बाप मिला है और हम आत्माएं समर्थ पिता के बच्चे बन गए, तो मैं भी समर्थ आत्मा हो गई। समर्थ की स्मृति से व्यर्थ जो है वह खत्म हो जाता, कि व्यर्थ हम क्यों सोचें, किसके लिए सोचें, व्यर्थ सोचने से क्या हासिल होगा। अगर यह स्मृति में ले आते कि बाबा ने तो हम बच्चों को व्यर्थ के बदले समर्थ कितना दिया है, समर्थ संकल्पों की रचना करके मैं आत्मा समर्थ शक्तिशाली बन जाती, मेरे आगे कोई भी आत्मा आ जाती व्यर्थ विचारों वाली भी, व्यर्थ बोलने वाली भी, लेकिन मेरी व्यर्थ स्मृति की स्थिति से सामने वाली आत्मा का भी व्यर्थ समाप्त हो जाता। तो अगर हम बाबा की छोटी छोटी बातों को भी इस स्मृति में रख करके अगर हम उन बातों का अभ्यास करते हैं तो आज हमारा भी कल्याण हो जाता, भला हो जाता। और बाबा कहते कि तुम निमित्त हो अनेक आत्माओं के कल्याण के, भले के, उन आत्माओं का भी कल्याण भला हो जाता। पर सबसे पहले आप स्व स्थिति को श्रेष्ठ बनाओ, स्व चिंतन को शक्तिशाली बनाओ, आप स्व के अभ्यास को मजबूत करो। आज बाबा हम बच्चों को कितना नहीं रोज के लिए स्व अभ्यास देते, स्व चिंतन का, शुभ चिंतन का। रोज की मुरली जो हम सुनते हैं, रोज की मुरली से ही हमारे को गाइडलाइन मिल जाती, मार्गदर्शना मिल जाती कि आज सारा दिन मुझे क्या करना है। प्यारे बाबा की कमाल कहेंगे कि परम पिता के रूप में हम बच्चों की पालना कर रहा है बाबा, पर साथ में परम शिक्षक बन करके हम बच्चों को पढ़ाई भी पढ़ा रहा, साथ में रोज बाबा हम बच्चों को इतना अच्छा होमवर्क देते, अभ्यास देते कि अगर हम रोज का रोज वह अभ्यास करते हैं, उस अभ्यास से भी मेरी शक्तिशाली स्थिति भी बन जाती और मैं नंबर वन आ सकता हूँ। देखो बीच में ही बाबा ने एक दिन मुरली में कहा कि बच्चे तुम्हें सारा दिन अभ्यास करना है। किस बात का? एक कान से सुन, दूसरे कान से व्यर्थ बातों को निकालने का था ना मुरली में। कि यूं तो रोज बाबा कहते आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करो, पर बाबा ने एक दिन कहा एक कान से सुन, दूसरे कान से निकालने का अभ्यास करो। क्योंकि सारा दिन सुबह से लेकर रात सोने तक हमारे अंदर, कानों के अंदर कितनी व्यर्थ बातें जाती हैं, यह तो संभव ही नहीं है कि हमारे कानों में बहुत अच्छी अच्छी बातें जाएं, काम की बातें जाएं। सुबह उठते, बाबा के घर जाते, बाबा की मुरली सुनते, वह मुरली के शक्तिशाली बोल ही सुबह सुबह हमारे कानों में जाते, जिनको हमें दोनों कानों से सुन के अंदर धारण करके अपनी शक्तिशाली स्थिति बनानी होती। उसके पश्चात सारा दिन हम अपने घर व्यवहार के कारोबार में जीविकोपार्जन के लिए, शरीर निर्वाह के लिए अनेक लोगों से मिलना, उठना, बैठना होता। उसमें आप विचार करो कितने बोल काम के रहते और कितने बोल व्यर्थ रहते। और अगर हम उन व्यर्थ के बोलों को जो हमारे कानों में जाते हम सुन लेते, अगर हम बाहर ना निकालें, अंदर ही अंदर उनको समा कर रखें, उनको अपनी स्मृति में रखें, तो हमारी स्थिति कैसी होगी? फिर तो जब योग में बैठेंगे तो वही सब बातें घूमना शुरू हो जाएंगी। इसलिए बाबा हम बच्चों को ये कार्य देते कि अभ्यास करो, सुना मेरे काम का है ही नहीं तो उसको निकाल दो, अर्थात उसको भूल जाओ। यह भी अभ्यास करना पड़ेगा कि सुना और उसको निकालने का, मुख से वर्णन करने का भी नहीं कि इसके आगे भी उसके आगे भी कि आज मेरे को वो ऐसा बोल रहा था, उसने ऐसा बोला, उस वह फिर दूसरे को सुनाएगा, तीसरे को सुनाएगा, व्यर्थ का वातावरण क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सुना, यूं तो बाबा कहते सुनो ही नहीं, पर ठीक है, सुनना भी पड़ जाता, खड़े भी होना पड़ जाता, पर उसको निकाल दो कि मेरे ये काम की नहीं, उसको जैसे कि मैं भूल ही जाऊं। उसके लिए भी मुझे बहुत अभ्यास करना पड़े कि अरे बाबा तो हम बच्चों को क्या कहता, बाबा की हम बच्चों को क्या शिक्षाएं, और ये व्यर्थ बोल ये किस काम के। सामने वाले को भी हम उसके तरीके से समझा सकते और अपना भी किनारा कर सकते हैं, पर यह हमारे ऊपर है कि मेरे को कितना इंटरेस्ट है अपनी स्थिति बनाने का, अपनी शक्तिशाली स्थिति बना करके अन्य की भी स्थिति बनाने का, अन्य का वैसा वायुमंडल क्रिएट करने का भी। यह मेरे ऊपर निर्भर करता है। आज बाबा हम बच्चों से कितनी नहीं उम्मीदें रखते, कितनी नहीं बाबा की हम बच्चों के प्रति श्रेष्ठ आशाएं हैं। बाबा की जो भी मुरली सुनते, चाहे अभी बाबा सीजन में आए, ये तो लास्ट है जिसमें हम सब आए, पर इसके पहले के जो भी बाबा की मुरलियां चली, बाबा आए, अगर मुरलियों को ध्यान से सुनो, पढ़ो, अंडरलाइन करो, बाबा की ये चाहना है, बाबा बच्चों से ये चाहता है, बाबा की बच्चों के प्रति ये शुभ आश है, उसमें बाबा ने विशेष किस बात के ऊपर जोर दिया, अटेंशन खिंचवाया। खुश मिजाज रहो, हर्षित चेहरे के द्वारा आप सेवा करो, हर्षित चेहरा, हर्षित मुख, खुश मिजाज, खुशनुमा, खुश किस्मत कि आपके जैसा खुश किस्मत कोई नहीं, खुश मिजाज, खुशी से मुस्कुराता चेहरा, जो कोई भी देखे तो हमारे चेहरे को देख करके सेवा हो जाए। बाबा ने यही तो अटेंशन खिंचवाया कि चेहरे और चलन के द्वारा आप बाबा का नाम बाला कर सकते हो, बाबा का शो कर सकते हो, परंतु हमारा खुश मिजाज भी हम कैसे रह सकते, खुशनुमा चेहरा भी कब रहेगा, हर्षित भी हम कब रह सकेंगे, जब हम इतना व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। व्यर्थ से मुक्त नहीं बनते हैं तो वह हमारे चेहरे पर भी दिखाई देता है, हमारी चलन में भी दिखाई देता, आचार विचार व्यवहार बोल सब में वह व्यर्थ दिखाई दे जाता, और जिसके कारण भले हम ऊपर से खुश भी दिखाई दे जाएंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट भी ले आएंगे, पर जो बाबा कहते रूहानियत भरी आपकी मुस्कुराहट हो, रूहानियत भरा आपका चेहरा हो, आपके चेहरे पर अलौकिकता दिखाई दे, आप आम जन नहीं दिखाई दो किंतु आप अलौकिक जन दिखाई दो कि ये किसी और अन्य जगत से प्रकट हुई अवतरित हुई आत्माएं हैं। यह कब हो सकता, कब हम बाबा की इन उम्मीदों को पूरा कर सकते। जब है छोटी छोटी बातें, कोई बहुत बाबा वैसी बातें नहीं हम बच्चों को कहते। बाबा कहते बच्चे तुम व्यर्थ से मुक्त बनो, तुम्हें इतना ऊंच बाप मिला, ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे बने, इतने ऊंच महावाक्य तुम्हें सुनने को मिल रहे, लोगों को थोड़ी मिल रहे। केवल हम भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्हें भगवान के महावाक्य सुनने को मिल रहे हैं। अपने भाग्य के ऊपर नाज करो, अपने भाग्य को सोचो कि आज हमारे सिवाय और कोई विश्व में दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कहें कि हम भगवान के महावाक्य सुबह सुनते हैं, भगवान के महावाक्य हमने सुने हैं, आज भगवान ने हम बच्चों को ये कहा है। किसी में ये ताकत ही नहीं है, कह ही नहीं सकता। अधिक से अधिक कह देंगे फलाने की वाणी सुनी, फलाने के प्रवचन सुने, भले टीवी में भी अनेकों के आते हैं, आज उनका ये सुना, उनके कथा सुनी, परंतु भगवान के महावाक्य सुनने वाले कौन हैं? हम भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्हें रोज भगवान परम धाम से आकर के पढ़ाते, भगवान के महावाक्य सुनते। हमारी दिनचर्या ही कैसे प्रारंभ होती, प्रातः सुबह अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में भगवान से मिलन मनाते, रूह रिहान करते, वार्तालाप करते, फिर उसके पश्चात भगवान के महावाक्य सुन करके, फिर उसके पश्चात हमारी दिनचर्या, हमारा कारोबार शुरू होता है। तो हमारे जितना जो बाबा कहते अपने भाग्य का स्मरण करो, भगवान तो हमारा भाग्य देखता रहता और हर्षित होता। अभी भी बाबा 22 तारीख को आए, फर्स्ट लाइन ही क्या थी कि बाबा बच्चों का भाग्य देख करके हर्षित हो रहे हैं। भगवान हमारा भाग्य देख करके, कि वो तो जानी जानन हारा, वो हमारा वर्तमान भी देख रहा और आगे का भी जानता कि इसका भाग्य क्या है, वह तो हमारे भाग्य को देख करके हर्षित होता। और हम बच्चे, हमें कितना ना अपने भाग्य को देखकर सिमरण करके हर्षित होना चाहिए कि वाह मेरा भाग्य, वाह। इसलिए अगर हमारा खुशनुमा चेहरा नहीं होगा तो किसका होगा। आज हम सब बाबा के बच्चे, बाहर की जो भी आत्माएं मिलती हैं, जिनको आप चाहते हो कि इनको भी बाबा का संदेश मिले, ये भी बाबा के बन जाएं, ये भी हमारे समान भाग्यवान बन जाएं, उनको कितने दावे से हम कहते आप आओ, हमारे यहाँ आओ, सुनो, एक बार तो आओ। हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम किसी मनुष्य आत्मा से नहीं पढ़ते। कितने निश्चय से कहते हैं, कहते हैं निश्चय से कि नहीं, कितना निश्चय से कहते, दावे से कहते, परंतु वो क्या देखेंगे। हमारे को निश्चय है ऐसा नहीं, पर वो हमारा क्या देखेंगे, वो हमारा चेहरा देखेंगे, हमारा बोलना देखेंगे, हमारा सब देखेंगे कि ये कहते कि भगवान पढ़ाते हैं, हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, परंतु इनका चेहरा तो देखो, इनके चेहरे पे तो कह देते हैं कहने वाले कि इनके चेहरे पे तो 12 ही बजे रहते हैं सारे, इनके चेहरे पे तो सदा हवाइयां ही उड़ती रहती, कुछ बात आ जाती है तो इनका चेहरा तो बिल्कुल डल हो जाता है, इनसे तो अच्छे हम है कई बार ऐसा भी कह देते हैं। इसलिए जो बाबा ने इस बार कहा है कि आप अपने खुश मिजाजी द्वारा, खुशनुमा चेहरे द्वारा, अपने हर्षित मुखता के द्वारा बाबा का नाम वाला करो, बाबा यही देखना चाहता है, तो हम क्यों नहीं खुश रहेंगे, क्यों नहीं खुश मिजाज, हमारा चेहरा थोड़ा क्यों उतर जाता। जो बाबा के अगर शब्दों को याद करो तो परिस्थितियां तो आती हैं, बातें भी आती हैं, है ना भाई, कहते क्यों खुशी भी कम हो जाती, खुश चेहरा भी फिर क्यों थोड़ा चेहरे पे गम की रेखाएं भी दिखाई देते। प्रायः एक ही सबका जवाब रहता, फलानी बात आ गई, ये हो गया, उसने ऐसा कह दिया, ये परिस्थिति आ गई, ये सब कारण सुना देते। परंतु बाबा कहते, बाबा की ही शिक्षाएं क्या है कि बाबा कहते ये तो कलयुग कलह क्लेश का संसार है, तो यहाँ आपको सुख का बहुत खुशियों का समाचार मिले वो तो नहीं मिलेगा, ऐसे ही समाचार सुनने को मिलेंगे। परिस्थितियां तो आती रहेंगी, परंतु बाबा की शिक्षा क्या है, आपकी स्व स्थिति मजबूत है तो परिस्थिति आपका कुछ भी नहीं कर सकती, परिस्थिति पर के द्वारा आई हुई है, स्व स्थिति आपकी है। आप क्यों अपनी स्व स्थिति को इतना जल्दी ऊपर नीचे कर लेते हो, या कहो दूसरे के हाथ में रिमोट दे देते हो अपना, कि उसने बहुत अच्छा आपके साथ में व्यवहार किया, बहुत अच्छा बोला, आपका बहुत गुणगान किया, आपकी वाह वाह की तो आप खुश, और जरा उसने आपकी बुराई कर दी, आपके लिए कुछ ऐसा बोल दिया, व्यवहार कर दिया, या आपकी अपेक्षा पूरी नहीं की, आपका काम नहीं, तो आप एकदम से डाउन भी हो गए, एकदम से आपका चेहरा उतर गया। बाबा कहते यहाँ पर इस कलयुगी इस संसार में आपके अनुसार तो सब कुछ हो ही नहीं सकता, परिस्थितियां बातें आती भी रही हैं, आई हैं तो वो जाएंगी भी सही। बाबा के ही ये बोल है ना अनमोल, कि कोई भी बात, कोई भी पेपर, कोई भी विघ्न आया है तो वो आपके पास मेहमान निवाजी करने के लिए नहीं आया है, सदा रहने के लिए नहीं आया है, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 1 महीना और कितना, परंतु आप उससे इतना घबरा जाते हो, बाबा का हाथ, बाबा का साथ भूल जाते हो, जबकि बाबा की तो हम बच्चों के प्रति ये प्रतिज्ञा है, बाबा का तो हम बच्चों से वायदा है, बाबा की हम बच्चों के प्रति बाबा तो गारंटी देता है कि बच्चे मैं तुम्हारे सदा साथ हूँ, तुम मेरा हाथ छोड़ के साथ हाथ से किनारा नहीं करना, मैं तो सदा तुम्हारे साथ हूँ और साथ ही रहूंगा। हम बाबा का हाथ साथ छोड़ और अनेक सहारों को ढूंढने लग जाते हैं, जो बाबा के अभी बीच में स्लोगन था कि किनारों को एक बाप सहारे को छोड़ अनेक किनारों को अपना सहारा बनाने लग जाते हैं और बाप से ही किनारा कर लेते हैं, पर बाप के साथ हाथ को हम सदा स्मृति में रखें कि आज बाबा का हम बच्चों के प्रति कितना प्यार है कि बाबा कहते कि सदा मैं तुम बच्चों के साथ हूँ। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर सदा है। सदा अमृत वेले से बाबा कहते आप यह अनुभव करो कि भगवान की छत्र छाया मेरे ऊपर है, किसी मनुष्यात्मा की नहीं पर भगवान की छत्र छाया मेरे ऊपर है। सुबह से हम बाबा से मिलन मनाते, अमृत वेले से मिलन मनाते हैं, शक्ति भरते, बाबा से वरदानों से झोली भरते और बाबा भी कहते सारा दिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरी छत्र छाया में चलो। अमृत वेले यह अनुभव करने का रहता कि बाबा की छत्र छाया मेरे ऊपर है। आज हमारी जानकी दादी जी हमेशा कहती हैं, सुनाती हैं कि जिसके ऊपर भगवान की छत्र छाया है, जो सदा यह स्मृति में रखता है, पक्का स्मृति में कि भगवान की छत्र छाया, बाबा की छत्र छाया मेरे ऊपर है, सारा दिन कार्य व्यवहार करते, कारोबार करते, परिवार संभालते, जिम्मेवारियां संभालते हुए भी यह स्मृति में रखते हैं, भूलते नहीं है, यह अनुभव में रहते कि बाबा की छत्र छाया मेरे ऊपर है, मैं छत्र छाया के अंदर चल रहा हूँ, कर रहा हूँ, खा पी रहा हूँ। तो दादी जी हमेशा कहती उसको उसके ऊपर किसी छाया की या पर छाया की असर नहीं हो सकता, उसके ऊपर छाया पर छाया का किसी का प्रभाव नहीं हो सकता है। आज बारिश होती, एक छोटा सा छाता हमारे पास में रहता है, भले हम आधे उसमें गीले होते रहते फिर भी अंदर में रहता, मेरे पास छाता है, छाता मैंने सिर पर लगा रखा है। और यहाँ तो भगवान की छत्र छाया हमारे ऊपर है, जिस छत्र छाया के अंदर हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और फिर भी अगर हम खुश नहीं रहते, फिर भी अगर हम हर्षित नहीं रहते तो अपने आप से सोचने की बात है कि हम भगवान के बच्चे। अगर हम खुश नहीं रहते, हमारा हर्षित मुख चेहरा नहीं, तो फिर बताओ किसका रहेगा। अगर हमारा ये हाल है तो फिर बेचारे जो जानते ही नहीं, जिनको परिचय ही नहीं, उनकी क्या स्थिति होगी। जब हमारी अगर ऐसी स्थिति है तो विचार करने की बात। आज देखें जब अपने अपने शहरों से मधुबन के लिए चलते हैं, सब कितना उमंग उत्साह से कि मधुबन जा रहे, बाबा से मिलने जा रहे, लास्ट टर्न है, फिर इसके बाद बाबा के आने का नहीं है, जो नहीं मिले हुए ईयर एंडिंग है, कई प्रकार की व्यवस्थाएं की होंगी, नहीं जाना है क्योंकि फिर इसके बाद तो बाबा का ये लास्ट डेट है। अनेकों से अनेकों ने पूछा भी होगा, कईयों ने कहाँ जा रहे हो, तो बड़े उससे कहा होगा कि भगवान से मिलने जा रहे हैं, मधुबन जा रहे हैं, छुट्टी ली होगी। कई भाइयों का भी अनुभव है कि छुट्टी लेते हैं, नहीं भी मिलती छुट्टी ऑफिस में, सहज थोड़ी है छुट्टी लेना, पर फिर भी नहीं हमारे को दे दो, आपका बहुत पुण्य होगा, आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगी, क्योंकि हम ऐसे ऐसे तीर्थ करने नहीं जा रहे, हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। कई अपना अनुभव सुनाते हैं, कितना नशे से, कितना उससे, तैयारियां भी करेंगे, घर की 10 एडजस्टमेंट भी करेंगे, कितना वो। और अगर मान लो यहाँ बाबा से मिलते हैं बड़े खुश, और फिर जाते हैं, अगर फिर उस संसार में गए तो बाबा तो कहते हैं कि वहां पर माया तैयार खड़ी है आपकी परीक्षा लेने के लिए। वो तो फिर पेपर हॉल में, यहाँ आए हैं, यहाँ तो बढ़िया डायमंड हॉल में बैठ के बाबा के महावाक्य सुनते सब करते, मधुबन आंगन प्रांगण कितना अच्छा, कि जो बाबा कहते हैं कि मधुबन तो तीर्थ स्थान है, कि मधुबन की स्मृति भी योग है कि नहीं। बाबा ने एक दिन वरदान में कहा ना कि मधुबन की स्मृति भी, मधुबन तीर्थ स्थान इसकी स्मृति भी योग है, कि आप योग नहीं लगता, कभी व्यर्थ चलता है तो बस मधुबन को स्मृति में ले आओ। और स्मृति में ले भी आते, और देखो ये भी हमारा भाग्य कि आज मधुबन में मधुबन का कोना कोना जो है, चाहे आप मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में जाओ, चाहे आप तपोवन में जाएं, चाहे अपना थर्मल प्लांट, चाहे आज अपना किचन, किचन कितना भव्य है कि जो जितनी मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी देखनी हो सब मधुबन में देखने को मिल जाएगी। कि अभी एक भाई गए मधुबन से बाबा से मिलके, सबके बीच में वर्णन कर रहे वहां का किचन देखो कितना अच्छा, ठंडक, कैसे लगेगा कि कहीं संग्रहालय में घूम रहे हैं, धुआं नहीं, गर्मी नहीं, ऐसा सब बैठे हैं वहां बड़े उससे, और दाल उबल रही है। तो यहाँ की विशेषता खासियत ना, सारा आधुनिक साइंस टेक्नोलॉजी, जो बाबा कहते हैं साइंस भी आपके सुख के लिए, इतना मधुबन महान तीर्थ में हम सब आते हैं, जहाँ इतनी हम श्रेष्ठ कमाई करते हैं और खुशी से भरपूर रहते, परंतु जब यहाँ से जाएंगे तो फिर बाबा कहते वो तो है ही पेपर हॉल, आप कहो यहाँ जैसा ही आपको वहाँ वातावरण मिलेगा नहीं, परंतु हमने जो अपने अंदर में शक्ति भरी यहाँ आकर के, मैंने जो यहाँ पर खुशी का स्टॉक अपने अंदर जमा किया, मैंने जो यहाँ पर व्यर्थ से मुक्त रह करके अपनी समर्थ स्थिति बनाई, मैंने जो यहाँ पर तपस्या की, आज बाबा के घर आके तपस्या, यहाँ आते हैं घूमने फिरने का लक्ष्य तो नहीं रहता, ठीक है सब स्थान देखेंगे घूमेंगे, पर अंदर में यह भी रहता कि तपस्या भूमि है, अपने स्थानों पर हम इतनी तपस्या नहीं कर सकते, घर परिवार सब, यहाँ पर किसी प्रकार की हमारे को चिंता नहीं है कि खाना बनाना है कि काम पे जाना है, बस यहाँ पर कमाई ही कमाई है। तो इतनी हम तपस्या करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर अगर जाएंगे फिर वहां पर तो तुरंत कुछ भी छोटा मोटा होता है, कोई भी बात आती है, कुछ भी परिस्थिति आती है, तो हम एकदम से अप डाउन क्यों हो जाते कि फिर कहते अरे क्या इतना अच्छा वहां, और आते से बस यहाँ पर ये झमेला ना ये बात, और वो झमेला बातें वो तो है ही झमेले का संसार, तो वहां पर झमेले ही होने हैं। ये संसार है हमारा मिलन मेला मनाने का स्थान, और वो स्थान है हमारा वहां पर तो ठीक है, अनेक आत्माओं से हमारा हिसाब किताब, अनेक प्रकार के लोग, इसलिए बाबा कहते हैं सब कुछ चला जाए किंतु मेरी खुशी जो है वो ना जाए। खुशी मेरी निजी चीज है, खुशी मेरी प्रॉपर्टी है, खुशी मेरा खजाना है, जो बाबा ने खुशी के लिए कितनी बातें सुनाई हैं, कितना कुछ नहीं कहा है, तो हमारी खुशी क्यों चली जाए। हमारे को अंदर में इतना स्मृति में रखना, इतना पक्का रखना है तो कुछ भी हो जाए, पर नहीं। बाबा ने कहा है ना कि आपके खुश चेहरे द्वारा आपके हर्षित मुख चेहरे द्वारा, आपके चेहरे द्वारा आप नहीं दिखाई दो पर बाप दिखाई दे, तो लोग मेरा खुशनुमा चेहरा देख करके ही लोग ये तो कहें कि इसने आखिर भी क्या पाया है, ये क्या लेकर के आया, इसको ऐसी कौन सी चीज है जो ये इतना खुश है। भले हम इसको इतना कुछ कह रहे, इसके आगे इतना कड़ा पेपर है, इसके आगे इतनी बड़ी परीक्षा आई है, पर फिर भी ये अचल अडोल है, क्योंकि हमारी स्थिति, हमारा चेहरा, हमारा फिर भी व्यवहार ही तो लोगों को सोचने के लिए मजबूर करेगा कि आखिर भी इनको ऐसी अंदर की कौन सी सूक्ष्म प्राप्ति हुई है। इसलिए आज हम सब बाबा के बच्चे हैं, भगवान ने हमारे ऊपर बहुत उम्मीदें रखी हैं कि बाबा तो कहते कि बाबा को भी तुम बच्चों के बगैर अच्छा नहीं लगता, नहीं बाबा ने अभी भी कहा कि बच्चों के बगैर तो बाप को भी अच्छा नहीं लगता, तो हम बच्चों को भी बाप के बगैर कौन अच्छा लगेगा न क्या अच्छा लगेगा। इसलिए सदा हर पल बाबा हमारे साथ है, बाबा का प्यार हमारे साथ है। आज देखो किसी के साथ में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, उस दुनिया का पोस्टेड व्यक्ति उसके साथ हो, या उसके ऊपर उसका वरद हस्त हो, उसके ऊपर उसकी कृपा दृष्टि हो, तो वो निर्भय रहता, वो सोचता कि अरे मेरे को क्या डर है, मेरे साथ में तो ये है, तो हमारे साथ में कौन है। हमारे साथ में वह स्वयं परम सत्ता, सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता हमारे साथ है, तो हम सबको डरने की क्या बात है। हमारे बीच में आदरणीय मुन्नी दीदी जी आ गई हैं, आप सबको इंतजार है।